मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 2 अप्रैल 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और 4 दिनों के बाद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं अपने उन 11 नौजवान साथियों का विशेष रूप से स्वागत करता हूं जिन्होंने एकेडमी का जो अगला बैच है 21 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, जो 4 नवंबर तक चलेगा, उसके लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं रोशन लाल दास छपरा बिहार से, उपेंद्र कुमार सिंह कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से, विवेक कुमार जमुई बिहार से, गौरव कुमार नौलखिया मधेपुरा बिहार से, साहिल कुमार सरकाघाट हिमाचल प्रदेश से, मुकेश कुमार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, दिनेश रुद्रपुर उत्तराखंड से, तरुण प्रसाद नई दिल्ली से, गुल मोहम्मद नालंदा बिहार से, हर्षिता गुप्ता उन्नाव उत्तर प्रदेश से और ललित कुमार बरेली उत्तर प्रदेश से। तो रोशन, उपेंद्र, विवेक, गौरव, साहिल, मुकेश, दिनेश, तरुण, गुल मोहम्मद, हर्षिता और ललित, आप सभी 11 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं सबसे पहले एक बार आज धन्यवाद देना चाहूंगा अपने 8वें बैच के सभी विद्यार्थियों को जिनके बड़े भावनात्मकता से ओतप्रोत मुझे मेल मिल रहे हैं। और मैं आप लोगों को मित्रों विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह से आप एकेडमी के हम लोगों को मिस कर रहे हैं, विश्वास कीजिए कि हम लोग भी आपको मिस कर रहे हैं। ये दो तरफा है और यही एक सच्चा संबंध भी होता है, या यूं कह लीजिए कि एक ऐसा संबंध होता है जो लंबे समय तक निभता भी है। मित्रों, सवाल इस बात का नहीं है कि हम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, हो सका तो मिले, हो सका तो कभी भी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर स्मृतियां किसी की बेहतर हैं किसी के बारे में, तो मान करके चलिए कि हम एक दिन में ही न जाने उससे कितनी बार मिल रहे होंगे। इसके लिए मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, बहुत बहुत तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग अभी भी 15 दिन की उन क्लासेस को अपनी स्मृतियों में बनाए हुए उन्हें अपना पूरा दुलार दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे इसी तरीके से दुलारते भी रहेंगे और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम लोग आपके इस दुलार के लिए अपने आप को और भी ज्यादा योग्य बना सकें। मित्रों, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि कम से कम आप लोगों को यह यकीन हो गया है कि नहीं, यहां से आप कुछ लेकर गए हैं। हाँ, अब उसे संभाल कर रखना, डेफिनेटली रखना ही नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ाना यह आपका दायित्व है। और चूंकि अब आप AFEIS के पूर्व विद्यार्थी रह चुके हैं, तो मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि आप अपने दायित्वों से जरा भी अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे, रोकेंगे भी नहीं, बल्कि आपके कदम लगातार आगे की ओर ही बढ़ते चलेंगे। निश्चित रूप से मित्रों, किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से हम सबकी मुलाकात होगी और फिर से हम अपनी उन स्मृतियों को तरोताजा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। दोस्तों, आइए मैं जरा सा मुख्य विषय के बारे में आपको बता दूं। और मुख्य विषय है दोस्तों कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके अनुसूचित जाति जनजाति जो कानून था उसके बारे में जो उसकी व्याख्या करते हुए जो निर्देश दिए हैं, उसको लेकर के हम कुछ बातें करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ी सी दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक इस बीच में आप देख रहे हैं कि CBSE के पेपर लीक का जो मामला है वो एक राष्ट्रीय स्तर का मामला बन गया है और ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। PSC वगैरह में आप देख रहे हैं तो उनके क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, और भी आप दूसरे एग्जामिनेशंस में भी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर्स को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। मित्रों, किसी भी तंत्र के ऊपर यदि इस तरह का विश्वास का भाव पैदा होता है तो वो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि यह युवाओं से जुड़ा हुआ है, युवाओं से ही नहीं बल्कि उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी ये तंत्र की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। क्योंकि परीक्षा के माध्यम से, परीक्षाओं के माध्यम से, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, जिनका चयन किया जाता है, इस आधार पर चयन किया जाता है कि ये जिस भी तंत्र में जाएंगे, चाहे वो निजी तंत्र हो चाहे वो सरकारी तंत्र हो, वहां वे परफॉर्म करेंगे और उसी से किसी भी देश का विकास होता है, देश आगे बढ़ता है। अगर वह चैनल ही गड़बड़ हो जाए, यानी कि जिनके माध्यम से चयन होना है अगर वही करप्ट हो जाए किसी भी वजह से, तो आप सोच करके देखिए कि हम छलनी से तो बहुत महीन चीजें चाहते थे कि निकले, लेकिन छेद बड़ा हो गया है तो पता लगा बड़ी बड़ी चीजें भी उससे निकल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। मित्रों, यह एक इशू है। मैं केवल फिलहाल इतना ही कहूंगा कि इस पर आप सब थोड़ा सा विचार करें, इससे संबंधित खबरों पर थोड़ा सा ध्यान भी दें। और जो प्रश्न बनता है वह यह कि हमारी जो परीक्षा प्रणाली है, अब हमको थोड़ा सा हट करके सिविल सर्विस की दृष्टि से सोचना होगा कि हमारी ये जो परीक्षा प्रणाली है, हम इस परीक्षा प्रणाली में किस तरीके से कुछ ऐसे सुधार करें कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में न हों। तो आप लोग इस बात पर थोड़ा सा विचार करें, और अगर कहीं से कोई सजेशन मिलता है तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप उन्हें नोट करते चले जाएं, यानी कि पूरे के पूरे एग्जामिनेशन के पैटर्न को कुछ ऐसा कर दिया जाए या हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इस तरीके से बदल दिया जाए कि पेपर लीक होना कोई उसमें मायने ही न रखे। अगर हो भी जाता है तो कोई सोचे ही नहीं कि पेपर लीक कर लिया जाए तो उससे कोई फायदा हो जाएगा। उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर के स्वरूप को कैसे बदल सकते हैं, सिलेबस को कैसे बदल सकते हैं, परीक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, इस तरह से ढेर सारे एंगल हैं। आप अपने अपने ढंग से इसके बारे में सोचने की कोशिश करें। इसके बाद फ्रेंड्स, रेडियो न्यूज में आपने एक छोटी सी खबर सुनी जो आप नोट कर सकते हैं, कंटेंट के रूप में आपके काम आ सकती है। वो ये कि भारत अब मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा राष्ट्र हो गया है। हमसे ज्यादा चीन बना रहा है और भारत दूसरे नंबर पर आ गया है। ये एक हमारी उपलब्धि के रूप में आप कहीं भी इसे, जहां भी जरूरत समझते हैं, जहां भी आपको प्रासंगिक लगता है वहां इसे कोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि ई वे बिल आज से लागू हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड जो बिल होगा, और ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जब सामान जाता है या पर्टिकुलर दूरी के बाद जब सामान का ट्रांसपोर्ट होगा तो उसको लेकर के ये है। इस पर आपका ध्यान रहना चाहिए। ये इस पर इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है कि प्री में भी कोई पूछ लिया जाए, है ना, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक छोटी सी खबर है संतोष ट्रॉफी को लेकर के, स्टेट सिविल सर्विस के लिए है। सिविल सर्विस में आईएएस के एग्जाम में तो इस तरह के प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और इस बार केरल इसका चैंपियन रहा है। तो मित्रों, ये कुछ छोटी छोटी खबरें थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। दोस्तों, अखबारों में आपने ये भी पढ़ा होगा और चैनल्स पर भी कल ये खबर थी कि आज भारत बंद का आह्वान किया है दलित संघ ने, और उसके पीछे है सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान व्याख्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान व्याख्या क्या है, आइए हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड को देखते हैं। सिविल सर्विस में जो अगर आपको अधिक नंबर लाने हैं तो उसका दोस्तों एक उपाय यह होता है, आपकी अपनी मौलिकता और एनालिसिस पावर तो काम करेगी ही। इसका एक उपाय यह भी होता है कि जो आपको घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण लग रही हैं, है ना, उनके कुछ तथ्य आप नोट कर लें। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि अगर आप तथ्य नोट नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि अगर आप तथ्य भी कुछ नोट कर लेंगे तो शायद थोड़े से ज्यादा नंबर मिल जाए, और थोड़े से ज्यादा नंबर मिलना ही इसमें मायने रखता है क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। जैसे दलित का जो अभी मामला है तो इसमें क्या तथ्य है, देखिए दो तीन तथ्य हैं, ज्यादा नहीं होते। पहला तो यह है कि ये जो पूरा का पूरा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और जिस पर उन्होंने अभी 20 तारीख को अपना डिसीजन दिया, 20 फरवरी को, ये डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र सरकार का मामला है। ये एक तथ्य है, ये तथ्य है कि किससे जुड़ा हुआ मामला है, तो डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र सरकार, ये आप नोट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जिसकी व्याख्या इन्होंने करते हुए, जिस व्याख्या तो नहीं कहना चाहिए, उन्होंने कानून की व्याख्या नहीं की, लेकिन ये कानून जिस तरीके से अभी तक लागू किया गया है और जो परिणाम सामने आए हैं उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। क्या कहा है मैं भी आपको बताऊंगा, यहां मैं अभी तथ्य आपको बता दूं। तो ये जो कानून है उसका नाम है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ब्रैकेट में है उत्पीड़न रोकथाम, ब्रैकेट क्लोज, कानून 1989, ये उस कानून का नाम है। ये भी तथ्य आपको याद कर लेना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ब्रैकेट में उत्पीड़न रोकथाम ब्रैकेट क्लोज कानून 1989. हाँ, यू नो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो 20 मार्च का डिसीजन है दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले का डिसीजन, उसको करेक्ट कर लीजिए, ये 20 मार्च 2018 का डिसीजन है। चाहे तो आप ये डेट भी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर के मुझे दो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि मामला क्या था, अब इसको आप बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दीजिए, बाकी चीजों के बारे में आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यह था कि एक महाराष्ट्र की एक जगह है कराड़, 2009 का ये मामला चल रहा था और उस वहां एक सरकारी फार्मेसी कॉलेज थी, उसमें यह हुआ कि एक दलित कर्मचारी ने वहां प्रथम श्रेणी के जो दो अधिकारी थे उनके खिलाफ उक्त कानून का सहारा लेते हुए FIR दर्ज कराई, इस कानून के तहत FIR दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई। अब वो शिकायत के लिए फिर DSP स्तर का जो अधिकारी होता है पुलिस का, DYSP जिसे आप कहते हैं, उसकी जांच की और फिर चार्जशीट दायर करने के लिए जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनसे लिखित निर्देश मांगा, आदेश कि भाई आप दीजिए। तो उस संस्थान के जो प्रभारी थे वही थे डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन, उन्होंने अपने अधिकारों के तहत ये कदम उठाया और उन्होंने कहा कि नहीं, चार्जशीट दायर नहीं की जा सकती, और चार्जशीट दायर नहीं की गई। फिर यह मामला हाई कोर्ट में गया और बाद में फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने अब उसकी व्याख्या की है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या, कहें व्याख्या शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अदरवाइज कह लीजिए कि उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अगर कोई डिसीजन देती है तो फिर वो कानून जैसा ही मामला बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बताने की कोशिश की है कि अक्सर ये देखा जा रहा है कि इस तरह के कानून का दुरुपयोग हो रहा है। किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है कि लोग दर्ज करा देते हैं FIR और अभी के कानून के हिसाब से यह है कि उनको हिरासत में लिया जाए और हिरासत में लेने के बाद जब अंतिम निर्णय तक पहुंचते हैं तो उसमें यह देखा गया है कि लगभग 75% मामलों में आरोपी दोष मुक्त हो जाते हैं। लगभग 2015 के आंकड़े हैं कि 75% या तो दोष मुक्त हो गए या उसे वापस ले लिया गया, और 15-16% मामलों में यह हुआ कि पुलिस अधिकारियों ने आखिरी में जाके मुकदमे को बंद करने की रिपोर्ट पेश कर दी कि भाई इसको बंद कर दिया जाए। इसका मतलब यह हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो निष्कर्ष निकाला है कि इस जो कानून है इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, मतलब गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, बदला लेने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं, जो भी है दबाव डालने के लिए आरोप लगाए जाते होंगे या अपनी बात को मनवाने के लिए आरोप लगाए जाते होंगे। तो अब उन्होंने ये निर्देश दिया कि नहीं, अब तुरंत उन्हें अरेस्ट न किया जाए, पहले एक अधिकारी उसकी जांच कर ले, अधिकारी की जांच करने के बाद अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तभी हिरासत में लिया जाए, तुरंत हिरासत में नहीं लिया जाए, इस तरह की कुछ बातें उन्होंने कही है। तो दोस्तों इसको लेकर के अब बहुत बड़ी बहस पूरे देश में छिड़ गई है। अगर आपने NDTV में बहस देखा हो तो उस चैनल पर भी इस इशू पर बहुत अच्छी बहस कराई गई थी जिसमें फैजान मुस्तफा साहब भी आए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही थी। अखबारों में भी आप देख रहे हैं कि लगातार इस पर आर्टिकल छप रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही है कि हम सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि वो अपने इस निर्णय पर फिर से विचार करें, और इसी के विरोध में जो संघ है उन्होंने बंद का आह्वान किया है अपने सामूहिक, इसका प्रतिरोध करने के लिए। अब आप देखिए कि इस पर बहुत ही जो फील्ड है ये बिल्कुल ओपन है, एकदम ओपन फील्ड है, आप भी अपने अपने तरीके से इस पर विचार कीजिए। इसी तरह की व्याख्या इससे पहले जो महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित कानून था उसमें भी की गई थी कि उस कानून का भी दुरुपयोग हो रहा है। जहां तक मित्रों प्रतिशत का सवाल है कि जो आरोप लगाए जाते हैं उसमें से कितनों को सजा मिल पाती है, तो दूसरे और भी बहुत से ऐसे कानून हैं जिसमें लोगों को सजा नहीं मिल पाती, बहुत ज्यादातर लोग छूट ही जाते हैं। तो अब दोनों तरफ की बात आप लेकर के चलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाती है तो उसका क्या प्रभाव होगा, राइट, और अगर नहीं, अगर पुरानी स्थिति में रहा जाता है तब उसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनका कहना यह है कि चूंकि समाज पर अभी भी उच्च वर्ग का अधिकार है, प्रशासन में उच्च वर्ग का अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में उन्हीं के खिलाफ जब इस तरह के मामले आते हैं तो वो सच नहीं हो पाते, तो आगे चलकर के ये कानून ही इस रूप में कमजोर हो जाएगा। तो वो जो बात कह रहे हैं वह भी बहुत गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह का उसका दुरुपयोग हो रहा है तो वहां भी कोई एक सही रास्ता निकाला जाना चाहिए। तो सही स्थिति क्या हो सकती है, मैं अपनी तरफ से अपने ओपिनियन आपके सामने कुछ भी नहीं रखने जा रहा हूं। अखबारों में जो चीजें आ रही हैं वो आपके सामने हैं, आप उनके पॉइंट्स दोनों तरफ से नोट करते चले जाएं और अपना निष्कर्ष निकालें कि आपको इसमें से क्या सही लगता है, और उसे फिर आप अपना आधार बना लें, अपने विचारों में ले आए कि क्या बीच का रास्ता हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो दलित वर्ग जो बात कह रहा है वो भी अपने आप में गलत नहीं है, आपको उसे भी पूरी संवेदनशीलता के साथ देखना होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो व्यावहारिक पक्ष है, उस पर भी आपको तार्किक रूप से विचार करना होगा, और फिर आप देखिए कि क्या निष्कर्ष निकालते हैं, और इस पर कुछ आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स जब भी मुझे उपलब्ध होंगे मैं निश्चित रूप से आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। मित्रों, आज के न्यूज एनालिसिस में बस इतना ही। मैं जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: रोहित सबधानी, हर्षिता उन्नाव उत्तर प्रदेश से, कांति देवी, विकास यादव कटिहार बिहार से, विनय कुमार कन्नौज उत्तर प्रदेश से, उमेद प्रकाश मेव बरडासर राजस्थान से, अर्जित शुक्ल आगरा उत्तर प्रदेश से, शैलजा सिंह कानपुर उत्तर प्रदेश से, विवेक धवन, राजेश जांगिड़, भारती साहू, अरविंद कुमार उपाध्याय बस्ती उत्तर प्रदेश से, अर्जुन रेकल, आकाश साहू भोपाल मध्य प्रदेश से, प्रशांत सोनी, प्रिया मिश्र, रोशनी जाट देवास मध्य प्रदेश से, प्रभाकर कुमार और सत्येंद्र पटेल, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।